नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। प्रदेश में कल से शहरी सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर प्रदेश भर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तंभ है जो समाज में न्याय और समानता की अलख जगाता है। सशक्त न्याय व्यवस्था से ही नागरिकों में सुरक्षा का भाव आता है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है।
मित्रों, न्याय व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। जब न्याय मजबूत होता है तो नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे साथियों, आज राजस्थान में 3 नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने राजस्थान के अंदर न्याय प्रक्रिया को तेज किया है और आने वाले समय में आपके सहयोग से वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान न्याय देने वाला अग्रणी राज्य होगा।
समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को सुरक्षा सेवाओं के दौरान घायल तथा सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र और समाज की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों के सम्मान और पुनर्वास के कामों में किसी भी स्तर पर विलंब नहीं होना चाहिए। श्री शर्मा ने आवश्यकता के अनुसार शिविर लगाकर समस्याओं को सुलझाने को भी कहा। प्रदेश में कल से शहरी सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। 7 नवंबर तक चलने वाले इन शिविरों में शेष रहे प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 17 सितंबर से शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत हुई थी। इनमें जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, पट्टे, नामांतरण और ऋण स्वीकृति सहित अन्य काम किए गए। इन कैंपों के बाकी रहे प्रकरणों को फॉलो अप कैंप में पूरा किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 15 नवंबर तक चलने वाले पखवाड़े के तहत विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में कोटपुतली बहरोड जिले में 92 ई मित्र केंद्रों पर लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया गया। जनजातीय बाहुल्य बांसवाड़ा जिले में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए आदिवासियों की समृद्ध विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह 15 नवंबर को मानगढ़ धाम में आयोजित होगा।
जनजातीय संस्कृति, परंपरा एवं चित्रकला प्रतियोगिता, लाभ संतृप्त शिविरों का आयोजन, विद्यालय में प्रार्थना सभा में भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डालना है, तो वहीं राजीविका के माध्यम से वन धन विकास केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम, आंगनवाड़ी केंद्रों पर जयंती कार्यक्रम, महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, आदिवासी महिलाओं को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम, ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन सहित 15 नवम्बर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर आयोजित होगा। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
कोटा में सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। ये रैली 4 नवंबर तक चलेगी। उम्मेद स्टेडियम में हो रही इस रैली में कल कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, ब्यावर, करौली और टोंक के अभ्यर्थियों ने अपना दमखम दिखाया। भर्ती में अगले चरण के लिए अब तक 1200 से अधिक प्रतिभागियों का अग्निवीरों के लिए चयन किया गया है। रैली में आज भीलवाड़ा और झालावाड़ के अभ्यर्थी शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश में अनुसंधान और विकास R&D इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष का भी शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में शिक्षा और उद्योग जगत से 3,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। बीकानेर संभाग में गंग नहर समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक समीक्षा बैठक में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये समारोह इस साल 5 दिसंबर से अगले साल 26 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में कई कार्यक्रम होंगे। श्री मेघवाल ने बताया कि 5 दिसम्बर 1925 को बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब के फिरोजपुर में गंग नहर का शिलान्यास किया था। 26 अक्टूबर 1927 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। उन्होंने बताया कि गंग नहर ने राजस्थान को हरित पट्टी और अन्न भंडार के रूप में नई पहचान दी है। पाली जिले की अरावली पर्वतमालाओं पर बसे भीमाणा, बाली, अरावल, तराई और कांठा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीताफल की आवक शुरू हो गई है। सीताफल से विभिन्न उत्पाद बनाने से क्षेत्र की महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इस कार्य में नाबार्ड भी महिलाओं की मदद कर रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इन महिलाओं ने सीताफल पल्प से सीताफल शॉट बनाना शुरू किया है। सीताफल का प्रोडक्शन 50 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 120 मीट्रिक टन किया गया है। अब महिलाएं नई पहल के तहत सीताफल पल्प को घर घर तक पहुंचाने के साथ ही 5-स्टार होटलों और विदेशों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोगों को नेचुरल सीताफल पल्प और अन्य फ्रोजन आइटम मिल सके। आदिवासी परिवारों को आगे बढ़ाने में नाबार्ड प्रशिक्षण और सहयोग दे रहा है, साथ ही महिलाओं की आमदनी में इजाफा हो रहा है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
प्रदेश में देवउठनी एकादशी के मौके पर आज विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मंदिरों में अल सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। शाम को मंदिरों में दीपदान किया जा रहा है। राज्य में कई स्थानों पर तुलसी और शालिग्राम के विशेष पूजा अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। वहीं आज से मांगलिक कार्यों की भी फिर से शुरुआत हो गई है। अनेक स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर, पाली और डूंगरपुर जिलों में शालिग्राम की बैंड बाजों के साथ बारात निकाली गई। वहीं डूंगरपुर जिले में जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं। उधर तीर्थराज पुष्कर में आज से पंच तीर्थ स्नान से धार्मिक मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। पुष्कर सरोवर के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
आज देव प्रबोधनी एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले पंच तीर्थ स्नान की औपचारिक शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुगणों द्वारा पवित्र सरोवर पुष्कर में स्नान, पूजा अर्चना और दान पुण्य कर धर्म लाभ उठाया जा रहा है। देशी सैलानी जिला प्रशासन पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात और सैलानियों के लिए अन्य सुविधाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सैलानियों और श्रद्धालुगणों की भीड़ को देखते हुए ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी पूरे दिन के लिए खुले रखे जा रहे हैं। नलेमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 26 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना शानदार 45 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत की अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दुबई के LN में अवनी ने स्वीडन की अना वैश्नौन को हराकर यह खिताब हासिल किया। राज्य में बीते 24 घंटों में अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा। नागौर और सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं धूप निकलने से दिन के तापमान में 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि मौसम का मिजाज कल से एक बार फिर से बदलने के आसार हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई स्थानों पर अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस बार नवंबर महीना सामान्य से अधिक ठंडा रहने के आसार हैं।
उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है और इस सिस्टम के असर से 3 और 4 नवंबर को विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान यानी जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 5 नवंबर से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। प्रदेश में कल से शहरी सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर प्रदेश भर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।